ओम शांति, ओम शांति। प्यारे बाबा, इस समय आकर हम बच्चों को बेफिक्र बादशाह बनाते हैं। जो ज्ञान बाबा हमें देते हैं वो हमें बेफिक्र बादशाह बना देता है। आत्मा का ज्ञान से मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। परमात्मा के ज्ञान से परमात्म साथ का अनुभव होता है। चक्र के ज्ञान से तीनों कालों तीनों लोकों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। उससे हमारा फिक्र खत्म हो जाता है। और फिर ड्रामा के ज्ञान से तो बाबा हमें बिल्कुल ही उड़ती कला का अनुभव कराता है। बच्चे कोई भी फिक्र मत करो, सब ड्रामा है, खेल है। तो इतना सब बाबा बेफिक्र बादशाह बनाते हैं, लेकिन फिर भी बाबा कहते एक फिक्र तुमको जरूर रखना है। कौन सा ऐसा फिक्र है जो हमें जरूर रखना है? बाबा कहते हैं तुम्हें फिक्र रखना है कि हम कैसे संपूर्ण बने। बस संपूर्ण बनकर बिना सजा खाए बाबा के घर जाएं, क्योंकि बिना सजा खाए तब जा सकेंगे जब यहां सब हमारे पाप नष्ट होंगे। तो उसके लिए याद की यात्रा कितनी जरूरी है। और अगर सजाएं खानी पड़ी भगवान के आगे, धर्मराज के आगे, तो बाबा कहते उस समय कितनी लज्जा आएगी। कोई अगर किसी का पिता जज हो और उसका बेटा मुजरिम बन करके जज के सामने कोर्ट में आए तो पिता को भी लज्जा आ जाएगी, मेरा बेटा और ये इसने ऐसा पाप किया है। तो बच्चे का कितना सिर नीचे हो जाएगा कि मेरे पिता ने तो मुझे कितना समझाया था लेकिन मैंने माना नहीं। अब ये पिता नहीं है, ये तो जज है। तो जज का तो काम है न्याय करना। तो भगवान के घर में देर है पर अंधेर तो नहीं है ना। इसलिए बाबा कहते हैं बिना सजा खाए हम जाएं, सिर ऊंचा करके जाएं, न कि सिर नीचा शर्मिंदा होकर जाएं। बस ये चिंता बाबा कहते जरूर रखो। तो उसके लिए क्या करना है बाबा वो भी समझाते हैं। तो सुनते हैं बाबा के माँ वाक्य आज 3/11/2025 है। मीठे बच्चे, बाप आए हैं वॉइसलेस दुनिया बनाने, निर्विकारी दुनिया बनाने बाबा आए हैं। तुम्हारे कैरेक्टर सुधारने आए हैं। तुम भाई भाई हो तो तुम्हारी दृष्टि बहुत शुद्ध होनी चाहिए। हमारा चरित्र इतना ऊंचा होना चाहिए, उसके लिए सबसे पहले है भाई भाई की दृष्टि हो। तब बाबा कहते हैं इतनी शुद्ध हो तब तुम्हारे कैरेक्टर सुधरे। प्रश्न है तुम बच्चे बेफिक्र बादशाह हो फिर भी तुम्हें एक मूल फिक्रात अवश्य होनी चाहिए। बेफिक्र बादशाह हो पर फिर भी तुम्हें एक मूल फिक्रात अवश्य होनी चाहिए, कौन सी? उत्तर, हम पतित से पावन कैसे बने, ये है मूल फिक्रात। ऐसा न हो कि बाप का बनकर फिर बाप के आगे सजाएं खानी पड़े। सजाओं से छूटने की फिक्रात रहे, नहीं तो उस समय बाबा भी होगा धर्मराज भी होगा तो उस समय बहुत लज्जा आएगी। बाकी तो तुम बेपरवाह बादशाह हो और कोई बात का फिक्र नहीं हो। सबको बाप का परिचय देना है, तो बाबा कहते हैं बाप का परिचय देने में भी फिक्रात मत करो, है ना। कई टीचर्स बहनें बहुत फिक्रात करती है, इतनी सेवा करती है, इतना कोर्स कराती है, क्या नहीं करती है, फिर भी कोई निकलते नहीं है, तो उनकी वो चिंता होती है आके कोई निकलते ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं वो भी चिंता नहीं करो, सबको बाप का परिचय देना है। कोई समझता है तो बेहद का मालिक बनता है, अगर वो समझेगा तो बेहद का मालिक बनेगा, नहीं समझता है तो उसकी तकदीर। तुम क्यों चिंता करते हो, तुम क्यों चिंता करते हो, देखो बाबा हमें कितना बेफिक्र बनाते हैं, तो उसकी तकदीर। तुम परवाह नहीं करो, बेपरवाह रहो, बस सेवा करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, बीज डालते जाओ। ओम शांति। रूहानी बाप जिसका नाम शिव है वो बैठ अपने बच्चों को समझाते हैं। रूहानी बाप सभी का एक ही है, तो पहले पहले ये बात समझानी है। हाँ, क्या कि रूहानी बाप सबका एक ही है, ये बात सबसे पहले समझानी है, तो फिर आगे समझना सहज होगा उनको। अगर बाप का परिचय ही नहीं मिला होगा तो प्रश्न करते रहेंगे। पहले पहले तो ये निश्चय कराना है। सारी दुनिया को ये पता नहीं है कि गीता का भगवान कौन है। वो श्री कृष्ण के लिए कह देते हैं, हम कहते हैं कौन है गीता का भगवान, हम कहते हैं परम पिता परमात्मा शिव गीता का भगवान है, वो ज्ञान का सागर है। तो मुख्य है ही सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमद् भगवद् गीता। भगवान के लिए कहते हैं, क्या कहते हैं भगवान के लिए, हे प्रभु तेरी गत मत न्यारी, हम सबकी सदगति करने की जो तुम मति देते हो, मत देते हो, वो सबसे न्यारी है। अब ये जो महिमा है तेरी गत मत न्यारी, बाबा कहते ये श्री कृष्ण के लिए ऐसे नहीं कहेंगे, न वो गति करता है न उसके लिए कोई मत देता है, इसलिए श्री कृष्ण के लिए ये नहीं कहेंगे। बाप जो सत्य है वो जरूर सत्य ही सुनाएंगे। बाबा का परिचय दिया, फिर उनको कहो देखो अभी जो भी ये ज्ञान है ये भगवान स्वयं सुनाते हैं, वो सत्य है, तो सत्य भगवान तो सत्य ही सुनाएगा। दुनिया पहले नई सतो प्रधान थी, अभी दुनिया पुरानी तमो प्रधान है। दुनिया को बदलने वाला केवल एक बाप ही है, कोई और दुनिया को बदल सकता ही नहीं। धर्म पिताएं भी नहीं बदल सकते, कोई नहीं बदल सकता। दुनिया को बदलने वाला एक बाप ही है। अब बाप कैसे बदलते हैं इस दुनिया को वो भी समझना चाहिए ना, फिर उसी अनुसार बाबा कहते समझाना भी चाहिए। तो उनको ये कहो वो समझो तो फिर उस अनुसार समझाओ। आत्मा जब सतो प्रधान बने, कैसे दुनिया बदलती है, पहले आत्मा सतो प्रधान बनती है। आत्मा जब सतो प्रधान बने तब दुनिया भी सतो प्रधान स्थापन हो। तो पहले पहले तुम बच्चों को अंतर्मुख होना है। अब दूसरों को ज्ञान तो देते हैं हम, लेकिन अगर बाह्य मुखी हो करके ना उसके देर को देख करके या थोड़ा कुछ और सोच करके देते हैं, अंतर्मुखी होकर नहीं देते तो उस पर असर नहीं होगा। तो बाबा कहते हैं तो पहले पहले तो तुम बच्चों को अंतर्मुख होना है, तो अंतर्मुखी होकर के किसको ज्ञान दो। फिर उसके बाद फिर बाबा कहते हैं चास्ती तीख तीख भी नहीं करनी है, और बात इधर की बात है उधर की बात है ये सब बाबा कहते हैं वो भी नहीं करनी है, अंतर्मुखी और समझाना है और वाहियात बातें और तीख दीख दुनिया की बातें नहीं करनी है। अंदर घुसते हैं जब वो आत्मा अंदर घुसती है बाबा के सेंटर में, तो अंदर घुसते हैं तो बहुत चित्र देख पूछते ही रहते हैं ये क्या है ये क्यों है क्या क्या पूछते रहते हैं ना, तो बहुत पूछते ही रहते हैं। तो पहले पहले समझानी ही एक बात चाहिए, जास्ती पूछने की मार्जिन उसको न मिले। बोलो पहले तो एक बात पर निश्चय करो, अभी वो चित्र को पूरा समझा ही नहीं गई वो क्या है वो क्या, पहले एक बात तो समझो। हाँ तो बाबा कहते हैं उनको बोलो पहले तो एक बात पर निश्चय करो फिर आगे समझाओ, फिर तुम 84 जन्मों के चक्र पर ले आ सकते हो। बाप कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ, इनको ही बाप कहते हैं। तुम अपने जन्मों को, हाँ बाबा कहते इनको ही बाप कहते हैं जिनके तन में प्रवेश कर ये हमें समझाते हैं, इनको ही बाप कहते हैं, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। तो ये ब्रह्मा बाबा ने नहीं समझाया, वो तो अपने जन्मों को जानता ही नहीं था, ये शिव परमात्मा ने उनमें प्रवेश कर समझाया है। तो तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो शिव बाबा ने इनको कहा, बाप हमको प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा समझाते हैं, ये नहीं समझाते हैं। बाप हमको प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा समझाते हैं। तो पहले पहले अलफ अलफ पर ही समझाते हो, अलफ समझने से फिर कोई संशय नहीं होगा कि किसने ज्ञान दिया कैसे दिया, वो बाद में समझते जाएंगे। अलफ समझने से फिर कोई संशय नहीं होगा। बोलो बाप तो सत्य है, वो भी असत्य कभी नहीं सुनाते, सत्य ही सुनाते। तो बेहद का बाप ही राजयोग सिखलाते हैं, शिवरात्रि गाई जाती है तो जरूर शिव यहाँ आए होंगे ना, जिनका गायन है जिनकी जयंती मनाते हैं या पुण्यतिथि मनाते हैं तो जरूर यहाँ आए होंगे ना। जैसे श्री कृष्ण जयंती भी मनाते हैं, हाँ यही मनाते हैं, कहते हैं मैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना करता हूँ तो उस एक ही निराकार बाप के सब बच्चे, श्री कृष्ण जयंती मनाते हैं, श्री कृष्ण आया है तो शिव बाबा की भी जयंती मनाते हैं, शिवरात्रि मनाते हैं। तो बाबा कहते हैं मैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराता हूँ उस एक ही निराकार बाप के सब बच्चे हैं, तू भी उनकी औलाद हो। वो कहे आप ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हो, तो बाबा कहते उनको कहो आप भी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हो, तुम भी तो उनकी औलाद हो, तुम भी उनकी औलाद हो और फिर प्रजापिता ब्रह्मा के भी औलाद हो। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना की तो जरूर ब्राह्मण ब्राह्मणियां होंगे। ब्रह्मा द्वारा स्थापना पहले किसको रचते हैं, ब्राह्मणों को रचते हैं, तो ब्राह्मण ब्राह्मणियां भी होंगे, बहन भाई हो गए। अब एक ही पिता के हैं बच्चे तो जरूर बहन भाई हो गए, इसमें पवित्रता रहती है, यह युक्ति है पवित्र रहने की। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहने की ये है भीति, भीति माना उनको आकर्षण देना है, उनको शक्ति भरनी है कि ये तुम भी उस एक ही पिता के बच्चे हो। बहन भाई हो तो कभी क्रिमिनल दृष्टि नहीं होनी चाहिए, 21 जन्म दृष्टि सुधर जाती है, ऐसे नहीं सारा कल्प सुधर जाती है, 21 जन्म तो सुधर ही जाती है ना, 21 जन्म दृष्टि सुधर जाती है। बाप ही बच्चों को शिक्षा देंगे ना, कैरेक्टर सुधारते हैं। अभी सारी दुनिया के कैरेक्टर सुधरने हैं, बिगड़ तो गए हैं, चरित्र सबका बिगड़ गया है। सबसे बड़ी गरीबी इस दुनिया में है चरित्र की गरीबी, सबसे बड़ी गरीबी। और गरीबी तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर ये चरित्र की गरीबी। तो बाबा कहते हैं अभी सारी दुनिया के कैरेक्टर सुधरने हैं, इस पुरानी पतित दुनिया में कोई कैरेक्टर नहीं, किसी में भी चरित्र नहीं, सब में विकार है, ये है ही पतित विशेष दुनिया। फिर वाइसलेस दुनिया कैसे बनेगी, सिवाय बाप के कोई बना न सके। अभी बाप पवित्र बना रहे हैं, पर ये गुप्त बातें, पवित्र बना रहे हैं जिससे पवित्र दुनिया स्थापन होगी, पर बाबा कहते सब गुप्त बातें हैं, कोई समझते नहीं है, ये सब है गुप्त बातें। तो हम आत्मा हैं, आत्मा को परमात्मा बाप से मिलना है, सब पुरुषार्थ करते ही है, इसलिए परमात्मा बाप से मिलने के लिए। भगवान तो एक निराकार है, लिबरेटर है, गाइड भी है, सब उसकी महिमाएं। दूसरे धर्म वाले कोई को लिबरेट गाइड नहीं करते हैं, सीधी बात भगवान कहते हैं, न किसको मुक्त नहीं करते हैं, किसको परम धाम नहीं ले जाते हैं, और धर्म पिताएं न लिबरेट करते हैं न गाइड करते हैं और धर्म पिताएं। परम पिता परमात्मा ही आकर के लिबरेट करते हैं, अर्थात लिबरेट करना, मुक्त करना, अर्थात तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं। जब तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे तभी मुक्त होंगे, गाइड भी करते हैं। तो पहले पहले यह एक ही बात सिद्ध बुद्धि में बिठाओ, अगर न समझे तो बाबा ने क्या कहा, टिक टिक नहीं करो, बहुत पीछे भी नहीं पढ़ो, अगर न समझे तो छोड़ देना चाहिए। अलफ को नहीं समझा तो बे से क्या फायदा, अब बादशाही मिलेगी, वो कहेगा मेरे को तो ये बादशाही बादशाही नहीं चाहिए, आपको कौन बादशाही देगा, कहां से आएगी, प्रश्न ही करते रहेंगे। तो बाबा कहते अलफ को नहीं समझा तो बे से भी क्या फायदा, बादशाही मिलेगी उस भगवान से, ये समझने से भी क्या फायदा, भले चले जाए चिंता नहीं करो, तुम मुझो नहीं, तुम बेपरवा बादशाह हो, असुरों के विघ्न तो पड़ने ही है, असुर फिर विघ्न भी डालते हैं, कैसे कैसे लोग आते हैं हमारी सेंटरों पर, हाँ बहने बहनों को कितना सावधान रहना पड़ता है, कई प्रकार के लोग आते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं असुरों के विघ्न भी पड़ने ही हैं, ये है ही रुद्र ज्ञान यज्ञ। तो पहले पहले बाप का परिचय देना है। बाप कहते हैं मन मना भव, जितना पुरुषार्थ करेंगे उस अनुसार पद पाएंगे। आदि सनातन देवी देवता धर्म का राज्य आदि सनातन देवी देवता धर्म का राज्य स्थापन हो रहा है। शिव बाबा धर्म भी स्थापन करते हैं, राज्य भी स्थापन करते हैं। इन लक्ष्मी नारायण की डिनास्टी है, और धर्म वाले कोई डिनास्टी स्थापन नहीं करते, राजा ही स्थापन नहीं करते, दूसरे धर्म वाले केवल धर्म स्थापन करते हैं। बाप तो आकर सबको मुक्त करते हैं, फिर अपने अपने समय पर और धर्म स्थापकों को आकर अपना धर्म स्थापन करना है, वृद्धि होनी है, पतित बनना ही है, वृद्धि भी होनी है पतित भी बनना है। पतित से पावन बनाना ये तो बाप का ही काम है, वो तो सिर्फ आकर धर्म स्थापन करेंगे, उसमें बढ़ाई की क्या बात है, क्योंकि बाबा कहते वो आते हैं उनके पीछे उस धर्म की आत्माएं आती जाती है, तो उसमें बढ़ाई की क्या बात है, कौन सा मुक्त करते हैं, कौन सा वापस ले जाते हैं, कौन सा पावन बनाते हैं, उसमें बढ़ाई की तो बात ही नहीं है, महिमा है ही एक की। वो तो क्राइस्ट के पिछाड़ी कितना करते हैं, उनको भी समझाया जाए, सब धर्म वालों को समझाया जाए तो जो क्राइस्ट के पीछे इतने बाबा कहते हैं उनको भी समझाया जाए कि लिबरेटर गाइड तो एक गॉड फादर ही है। और वो कहते भी हैं गॉड द फादर कहते भी हैं। और क्राइस्ट ने खुद ही कहा उनको याद करो और उनको ही कहा लीड मी दाई काइंडली लाइट, हे भगवान मुझे सही रास्ता बताओ। हाँ तो किसको कहा, तो ऊंचे से ऊंचा तो एक ही है। तो बाबा कहते उनको भी समझाया जाए कि लिबरेटर गाइड तो गॉड फादर ही है, उनके पिछाड़ी क्रिश्चियन धर्म की आत्माएं आती रहती है, नीचे उतरती रहती है, दुख से छुड़ाने वाला तो केवल एक बाप ही है। कोई किसी को दुख से नहीं छुड़ा सकता है, केवल एक बाप ही छुड़ा सकता है। ये सब पॉइंट्स बुद्धि में अच्छी रीति धारण करनी है। एक गॉड को ही मर्सीफुल भी कहा जाता है, सब पर वो ही रहम करते हैं, एक भी मनुष्य किसी पर मर्सी भी नहीं करते। तो बताओ ये भी बाबा कहते हैं न गाइड क्या लिबरेटर क्या, रहम भी नहीं कर सकते क्योंकि उन आत्माओं को नीचे उतरना ही है, मर्सी भी नहीं करते। मर्सी होती है बेहद की, चलो हद का रहम कुछ करेंगे, कोई गरीब है थोड़ा धन दे देंगे, थोड़ा रहम कर लिया, किसको मदद कर लिया, पर बेहद की मर्सी बेहद का रहम सबको मुक्त कर देना ये तो भगवान का ही काम है। मर्सी होती है बेहद की, एक बाप ही सब पर रहम करते हैं, सतयुग में सुख शांति में रहते हैं, दुख की तो बात ही नहीं। बच्चे एक बात अलग पर किसको निश्चय कराते नहीं है, नहीं कराते नहीं है, निश्चय नहीं कराते हैं और बातों में चले जाते हैं। फिर कहते हैं फिर बच्चे बाबा को लिखते हैं, जब बहुत सेवा होती है ना तो समझाते तो रहते हैं, लेकिन फिर बाबा को लिखते हैं बाबा हमारा गला ही खराब हो गया, गला ही बैठ गया क्योंकि बहुत ज्यादा बोलना पड़ता। तो फिर कहते हैं बाबा गला ही खराब हो गया। अरे पहले पहले तो बाप का परिचय देना है, तुम और बातों में जाओ ही नहीं, बोलो बाप तो सत्य बोलेंगे ना, हम बीके को बाप ही सुनाते हैं, ये चित्र सब उसने बनवाए हैं, ये सारे चित्र भगवान ने बनवाए हैं, साक्षात्कार के द्वारा बनवाए, इसमें संशय नहीं लाना चाहिए। संशय बुद्धि तो क्या होगा उसको, वो विनश्यंती हो जाएंगे। तो संशय बुद्धि विनश्यंती, पहले पहले तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, और कोई उपाय नहीं, विकर्म विनाश का और कोई उपाय नहीं, तुम बाप को याद करो। पतित पावन तो एक ही है ना, तो बाप कहते हैं देह के सब संबंध छोड़ माम एकम याद करो। बाप जिसमें प्रवेश करते हैं, जिस ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं, उनको भी फिर पुरुषार्थ कर सतो प्रदान बनना है। हाँ, बाबा इन पर नहीं इसे नहीं रहम कर देते कि तुम भले पुरुषार्थ नहीं करो क्योंकि मैंने तुम्हारा तन लिया, तो उनको भी पुरुषार्थ करना है। तो बाबा कहते हैं उनको भी पुरुषार्थ कर सतो प्रधान बनना है, बनेंगे पुरुषार्थ से। सतो प्रदान कैसे बनेंगे, हाँ कोई जादू का खेल नहीं है, बनेंगे पुरुषार्थ से। फिर ब्रह्मा और विष्णु का कनेक्शन भी बताते हैं कि तुम ब्रह्मा फिर जाकर विष्णु बनोगे, कनेक्शन भी बताते हैं। बाप तुम ब्राह्मणों को राजयोग सिखलाते हैं तो तुम विष्णुपुरी के मालिक बनते हो, फिर तुम ही 84 जन्म ले अंत में शूद्र बनते हो, फिर बाप आकर शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। ऐसे और कोई बता न सके, और किसको थोड़ी आएगा ये ज्ञान कि हम इस समय सब शूद्र बन गए हैं फिर भगवान आकर हमको शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं, ऐसे कोई समझा न सके, ऐसे और कोई बता न सके। तो पहली पहली बात है कौन सी बात बाबा ने बताई आज? पहली बात, बाप का परिचय देना। बाप कहते हैं मुझे ही पतितों को पावन बनाने यहाँ आना पड़ता है, ऐसे नहीं यहाँ आना पड़ता है, ऐसे नहीं कि ऊपर से प्रेरणा देता हूँ। इनका ही नाम है भागीरथ, तो आना पड़ता है और जिनके तन में आता हूँ उनका नाम है भागीरथ, भाग्यशाली रथ, तो जरूर इन्हीं ही प्रवेश करेंगे। ये है भी बहुत जन्मों के अंत का जन्म। फिर सतो प्रधान बनते हैं, उसके लिए बाप युक्ति बताते हैं कैसे बनो सतो प्रधान। उसके लिए युक्ति बताते हैं कि अपने को आत्मा समझ माम एकम याद करो, बस यही युक्ति है सतो प्रधान बनने की। मैं ही सर्वशक्तिवान हूँ, मुझे याद करने से तुम्हारे में शक्ति आएगी, तुम विश्व के मालिक बनेंगे। बाबा की याद से इतनी शक्ति आ जाती है, जो बाबा कहते तुम विश्व के मालिक बनेंगे। ये लक्ष्मी नारायण का वर्षा इन्हों को बाप से मिला है, कैसे मिला है वो भी समझाते हैं। प्रदर्शनी म्यूजियम आदि में भी तुम कह सकते हो कि पहले एक बात को समझो फिर और बातों में जाना, ये बहुत जरूरी है समझना। नहीं तो क्यों जरूरी है समझना, तो उनको कहो ये बहुत जरूरी है ये एक बात समझना, नहीं तो तुम दुख से छूट नहीं सकेंगे। अगर दुख से छूटना है तो पहले तुमको एक बाप को समझना होगा, कौन है वो परमात्मा, नहीं तो तुम दुख से छूट नहीं सकेंगे। तो पहले जब तक निश्चय नहीं किया है तो तुम कुछ समझ नहीं सकेंगे, उनको कहो। इस समय है ही भ्रष्टाचारी दुनिया, देवी देवताओं की दुनिया श्रेष्ठाचारी थी, तो ऐसे ऐसे समझाना है। मनुष्यों की नब्ज भी देखनी चाहिए, आखिर वो क्या चाहता है। अगर वो कहता है मुझे तो शांति चाहिए, तो शांति कैसे मिलेगी, भगवान को पहचानने से, उनको याद करने से। तो इसीलिए जो इसको क्या चाहिए बाबा कहते उस अनुसार समझाना है। तो मनुष्यों की नब्ज भी देखनी चाहिए, फिर उस नब्ज में क्या देखना है उनको समझाना है। पर उस नब्ज में क्या देखना है, कुछ समझता भी है या नहीं, आप इतना उनको समझा रहे हो वो कुछ समझता भी है या नहीं, या तवाई है। तवाई जो होगा ना, आप उनको समझाएंगे तो वो और चित्रों को देखता रहेगा, इधर उधर देखता रहेगा, आप क्या समझा रहे हो वो समझने की कोशिश भी नहीं करेगा। तो बाबा कहते वो तवाई है, तवाई माना गरम तवे पर पानी डालो वो एकदम उड़ जाएगा, तो वो समझेगा ही नहीं। तो बाबा कहते नब्ज देखो, ये सचमुच समझ रहा है या ये तवाई है। अगर तवाई है तो फिर क्या करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। अच्छा जाओ आप, तुम जाके खुद ही देख लो, बस पीछे नहीं पड़ना चाहिए। अगर तवाई है तो फिर छोड़ देना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। चात्रक हो पात्र हो तो चात्रक और पात्र को परखने की भी बुद्धि चाहिए, ये कौन ये व्यक्ति सचमुच चात्रक है, समझना चाहता है, क्या ये पात्र भी है। तो बाबा कहते हैं परखने की बुद्धि चाहिए। जो समझने वाला होगा, कैसे पता चलेगा ये समझने वाला है, उनका चेहरा ही बदल जाएगा, वो इतना खुश होगा सुन करके समझ करके, चेहरा ही बदल जाएगा। तो पहले पहले तो खुशी की बात देनी है, बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है ना, फिर बे समझाओ तो उसको खुशी आएगी, तो समझो अभी ये समझने वाला है, फिर उनको वर्षे की बात समझाओ। तो बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है ना, तो बाबा जानते हैं याद की यात्रा में बच्चे बहुत ढीले हैं। अब वो उन आत्माओं के लिए भी बताया, फिर बाबा अपने बच्चों को भी कहते हैं याद की यात्रा में होंगे तो उन पर असर पड़ेगा, वो समझने की कोशिश भी करेंगे। हम बच्चे ही ढीले ढाले हैं या देही अभिमानी नहीं है तो उनको तीर भी नहीं लगेगा। तो दोनों बातें, एक तो उसका भी भाग्य हो और दूसरा फिर समझाने वाला भी उसी स्थिति में हो। तो बाबा पहले पहले तो खुशी की बात देनी है। बाबा जानते हैं याद की यात्रा में बच्चे बहुत ढीले हैं, बाप को याद करने की मेहनत है, उसमें ही माया बहुत विघ्न डालती है। ये भी खेल बना हुआ है, माया विघ्न डालती है, भगवान आके क्या देते हैं, फिर माया कैसे उसमें विघ्न डालती है, ये भी खेल बना हुआ है। बाप बैठ समझाते हैं कैसे ये खेल बना बनाया है। दुनिया के मनुष्य तो रिंचक भी नहीं जानते हैं, रिंचक माने इतना भी, जरा भी नहीं जानते हैं। बाप की याद में रहने से तुम किसको समझाने में भी एक रस होंगे। एक रस होकर के समझाएंगे, बाबा की याद में समझाएंगे तो आपकी स्थिति का भी प्रभाव पड़ेगा उन पर, तो समझाने में भी एक रस होंगे, नहीं तो कुछ न कुछ नुक्स निकालते रहेंगे, वो भी आप में से कुछ न कुछ नुक्स निकालते रहेंगे, कमी निकालते रहेंगे। बाबा कहते हैं तुम जास्ती कुछ भी तकलीफ न लो, स्थापना तो जरूर होनी ही है, चिंता नहीं करो, समझाओ पर चिंता नहीं करो, स्थापना तो जरूर होनी ही है, जास्ती तकलीफ भी न लो। भावी को तो कोई भी टाल नहीं सकता, सेवा नहीं हो रही है, सेवा नहीं हो रही, बाबा क्या करे, बाबा कहते चिंता मत करो, स्थापना तो होनी है, उसको कोई टाल नहीं सकता है, लेकिन तुम बेफिक्र बादशाह होके स्थिति बनाकर सेवा करो। भावी को कोई भी टाल नहीं सकता है, उल्लास में रहना चाहिए। बाप से हम बेहद का वर्षा ले रहे हैं, तो बाप कहते हैं माम एकम याद करो, बहुत प्रेम से बैठ समझाना है। बाप को याद करते, बहुत ऊंची बात बाबा कहते हैं, बाप को याद करते प्रेम में आंसू भी आ जाने चाहिए। आते हैं आंसू जिनको बाबा की याद में प्रेम के आंसू आते हैं, हाथ उठाओ। अच्छा, सबको आते हैं, वेरी गुड, हाँ बहुत अच्छी बात है। बाप को याद, देखो बाबा ने कितना प्यार किया है, जिनको बाबा की याद में प्रेम के आंसू आते हैं उनको बाबा बहुत प्यार करते हैं। बाप को याद करते प्रेम में आंसू आ जाने चाहिए, और तो सभी संबंध है कलयुगी, वो ये है रूहानी बाप का संबंध। ये तुम्हारे आंसू, अगर बाबा की याद में प्रेम के आंसू आए, ये तुम्हारे आंसू भी विजय माला का दाना बन जाते हैं, विजय माला का दाना बन जाते। बाबा ने एक बार सुनाया था ना कि एक बांधेली माता बहुत रोती थी बाबा की याद में, बहुत बंधन भी था, तो उसको प्रेम के आंसू आते थे, तो उसने क्या किया, वो आंसू एक डिब्बी में भरे, वो डिब्बी में भर करके बाबा को वो डिब्बी भेजी, बाबा ये मेरे प्रेम के आंसू हैं। तो बाबा ने उस डिब्बी को आंखों पर रखा, जैसे बाबा ने उनको प्यार किया, तो ये प्रेम के आंसू सच्चे मोती बन जाएंगे, विजय माला के दाने बन जाएंगे। तो देखो बाबा कहते हैं, तो बाबा कहते हैं ये तुम्हारे आंसू भी विजय माला के दाने बनते हैं, बहुत थोड़े हैं जो ऐसा प्रेम से बाप को याद करते हैं। कोशिश कर जितना हो सके अपना टाइम निकाल, अपने भविष्य को ऊंचा बनाना चाहिए, टाइम निकाल अपने भविष्य को ऊंचा बनाना चाहिए। प्रदर्शनी में इतने ढेर बच्चे नहीं होने चाहिए, इतने ढेर बच्चे नहीं होने चाहिए, बहुत ज्यादा घमसान भी न हो, न इतने चित्रों की दरकार है, बहुत चित्रों की भी दरकार नहीं है। नंबर वन चित्र है गीता का भगवान कौन, उसके बाजू में लक्ष्मी नारायण का और सीढ़ी का चित्र हो, बस बाकी इतने चित्र कोई काम के नहीं। तुम बच्चों को जितना हो सके याद की यात्रा को बढ़ाना है, तो मूल फिक्रात एक ही रखनी है, कि पतित से पावन कैसे बने, ये है मूल फिकरात। बाबा का बनकर और फिर बाबा के आगे जाकर सजा खाएं, ये तो बड़ी दुर्गति की बात है ना, लज्जा की बात है, दुर्गति की बात है कि बाबा के आगे जाकर फिर सजा खाएं, ये बड़ी दुर्गति की बात है। अभी याद की यात्रा पर नहीं रहेंगे तो फिर बाप के आगे सजा खाने समय बहुत बहुत लज्जा आएगी, शर्मिंदा होंगी ना, लज्जा आएगी, जैसे अंदर में पश्चाताप के आंसू भी आएंगे। सजा न खानी पड़े ये सबसे जास्ती फुरना रखना है। आज का अंडरलाइन वाक्य क्या है, सबसे जास्ती फुरना किसका खाना, किसका रखना है, कि बाबा के सामने सजा न खाएं। तुम रूप भी हो बसंत भी हो, बाबा भी कहते हैं मैं भी रूप और बसंत हूँ, जी बाबा भी रूप बसंत है, छोटी सी बिंदु हूँ और फिर ज्ञान का सागर भी हूँ। तो रूप माना छोटी सी बिंदी और फिर बसंत माना ज्ञान का सागर, तो बाबा रूप बसंत है, बिंदु में सिंधु है, हम यही कहते हैं बिंदु में सिंधु है, तो बिंदु है पर उसमें सिंधु है, सब गुणों का सिंधु है। तो बाबा कहते हैं छोटी सी बिंदी हूँ और फिर ज्ञान का सागर भी हूँ, इसको कहेंगे रूप बसंत। तुम्हारी आत्मा में सारा ज्ञान भरते हैं, 84 जन्मों का सारा राज तुम्हारी बुद्धि में है, तुम ज्ञान का स्वरूप बन ज्ञान की वर्षा करते हो, स्वरूप बन ज्ञान का और ज्ञान की वर्षा करते हो। ज्ञान का एक एक रत्न कितना अमूल्य है, इनकी वैल्यू कोई कर न सके, इसीलिए अमूल्य रत्न कोई बेचे नहीं जाते हैं, बाबा कहते हैं ये तो सबको देने हैं, इनकी वैल्यू कोई कर न सके, इसलिए बाबा कहते हैं जब देते हो ये ज्ञान के रत्न तो खुद कितने रत्न जमा करते हो भविष्य के लिए, इसीलिए बाबा ऐसे बच्चों को कहते हैं पद्मा पदम भाग्यशाली, तुम ज्ञान के रत्न बांटते हो तो तुम्हारे कदमों में पद्मों की कमाई हो जाती है, इसलिए बाबा कहते हैं पद्मा पदम भाग्यशाली, तुम्हारे चरणों में पद्म की निशानी भी दिखाते हैं, कईयों के चरण में ऐसे पद्म कमल की निशानी होती है। अब इनको कोई समझ न सके कि ये पद्म की निशानी का मतलब क्या, कदम कदम में पद्म, इनको कोई समझ न सके, मनुष्य पद्म पति भी नाम रखते हैं, किसकी सरनेम भी होती है पद्म पति, समझते हैं इनके पास बहुत धन है, पद्म पति का एक सरनेम भी रखते हैं, कोई धनवान है तो कहेंगे पद्म पति है, बस पद्म पति का सरनेम भी होता है। बाप सब बातें समझाते हैं फिर कहते हैं, इतना सब समझाकर फिर क्या कहते हैं, मूल बात है कि बाप को और 84 के चक्र को याद करो। ये नॉलेज भारतवासियों के लिए ही है, मेन भारतवासी है, डबल विदेशी भी जो अपने आप को आदि भारतवासी समझते हैं उनके लिए भी है, आदि में तो भारत में ही थे ना। तो बाबा कहते हैं ये नॉलेज भारतवासियों के लिए ही है, तुम्हें 84 जन्म लेते हो ये भी समझ की बात है ना, और कोई सन्यासी आदि को स्वदर्शन चक्रधारी नहीं कहेंगे, किसी भी देहधारी को और स्वदर्शन चक्रधारी नहीं कहेंगे, देवताओं को भी नहीं कहेंगे स्वदर्शन चक्रधारी, देवताओं में ज्ञान तो होता ही नहीं है, सृष्टि चक्र का ज्ञान तो देवताओं में है नहीं, तुम कहेंगे हमारे में सारा ज्ञान है, इन लक्ष्मी नारायण में भी नहीं है, तो कितने ऊंचे हो गए हम देवताओं से भी, इन लक्ष्मी नारायण में भी नहीं है, बाप तो यथार्थ बात समझाते है ना, ये ज्ञान बड़ा वंडरफुल है, तुम कितने गुप्त स्टूडेंट्स हो, गुप्त स्टूडेंट्स, तुम कहेंगे हम पाठशाला में जाते हैं भगवान हमको पढ़ाते हैं, हाँ बूढ़ी बूढ़ी माताएं भी आती है ना, कहेंगे हम तो स्टूडेंट है पाठशाला में, कई तो माताएं बूढ़ी माताएं कहती है हम तो यूनिवर्सिटी में जाते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं ये गुप्त है, तुम कहेंगे हम पाठशाला में जाते हैं, भगवान हमको पढ़ाते हैं, एम ऑब्जेक्ट क्या है, हम ये लक्ष्मी नारायण बनेंगे। तो उनसे पूछो तुम इतनी यूनिवर्सिटी में जाते हो क्या क्या बनेंगे, तो बोला हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे। मनुष्य सुनकर वंडर खाएंगे, हम अपने हेड ऑफिस में जाते हैं, आते ना विदेश से भाई बहने आते हैं, तो विदेश के भाई बहनों को कई वहां के लोग कहते तुम क्या हर साल माउंट आबू जाते हो, क्या रखा है वहां माउंट आबू में क्यों जाते हो, तो वो कहते हम भगवान से मिलने जाते हैं। तो लोग समझते ये पागल हो गया है, भारत में जाते हैं माउंट आबू जाते हैं भगवान से मिलने के लिए, जैसे भगवान वहां रखा है वहां वहां बैठा है, तो इसलिए उनको समझ भी नहीं आता। तो बाबा कहते हैं मनुष्य सुनकर बहुत वंडर खाएंगे, हम अपने हेड ऑफिस में जाते हैं, हमारी हेड ऑफिस माउंट आबू में है। तो देखो माउंट आबू सारे विश्व में कितना प्रख्यात हो गया। क्या पढ़ते हो, हम मनुष्य से देवता बेगर से प्रिंस बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, तुम्हारे चित्र भी कितने फर्स्ट क्लास है, धन दान भी हमेशा पात्र को किया जाता है, पात्र तुमको कहाँ मिलेंगे, ज्ञान दान करने लिए पात्र कहाँ मिलेंगे। बाबा कहते शिव के, लक्ष्मी नारायण के, राम सीता के मंदिरों में मिलेंगे, पहले तो मंदिरों में मिलेंगे, और फिर और कई बार बाबा ने कहा था कि सागर के किनारे मिलेंगे, हाँ नदियों के किनारे मिलेंगे, लेक के किनारे मिलेंगे, जो वानप्रस्थी होते हैं ना, तो वो तो ऐसे बैठे होते हैं मजा करते हैं, और बगीचों में मिलेंगे। तो कल तो देखो यहाँ नीचे शांतिवन में खास एक प्रोग्राम हुआ, जिसमें वानप्रस्थियों के लिए एक खास प्रोग्राम था, उनकी सेवा कैसे करें, तो बड़ा प्रोग्राम अच्छा था, वहां उसका मिनिस्टर भी आया था। तो वहां जाकर के तुम उन्हों की सेवा करो, अपना टाइम वेस्ट नहीं करो, गंगा नदी पर भी तुम जाकर समझाओ, पतित पावनी गंगा है या परम पिता परमात्मा है, सर्व की सदगति ये पानी करेगा या बेहद का बाप करेगा, कौन करेगा सदगति सबकी, तुम इस पर अच्छी रीति समझा सकते हो, विश्व का मालिक बनने का रास्ता बताते हो, दान करते हो, कौड़ी जैसे मनुष्य को हीरे जैसे विश्व का मालिक बनाते हो, भारत विश्व का मालिक था ना, तुम ब्राह्मणों का देवताओं से भी उत्तम कुल है, ये बाबा तो समझाते हैं, ये बाबा तो समझते हैं, देखो ब्रह्मा बाबा क्या समझते हैं, ये बाबा तो समझते हैं मैं बाप का एक ही सिकी लदा बचाऊं, शिव बाबा का ब्रह्मा बाबा एक ही सिकी लदा बचाए और बाकी सब मेरे बच्चे हैं, ब्रह्मा बाबा को ये भी नशा है। तो बाबा कहते हैं मैं बाप का एक ही सिकी लदा बच्चा हूं, बाबा ने हमारा ये शरीर लोन पर लिया है, सिकी लदा बच्चा है बाबा का, तुम्हारे सिवाय और कोई भी ये बातें समझ न सके, बाबा की हमारे पर सवारी की हुई है, ब्रह्मा बाबा को नशा था कि शिव बाबा की हमारे पर सवारी हुई है, सवारी की हुई है, हमने बाबा को कुल्हे पर बिठाया है, ब्रह्मा बाबा ने नशा था कि हमने शिव बाबा को कुल्हे पर बिठाया, हमारी दादी जानकी को तो इनसे भी डबल नशा था, जब दादी जानकी विदेश में गए तो इतने देशों का निमंत्रण मिला, दादी जाती थी कितने देशों में, दादी गई जहां गई सेंटर खुल जाता था, ऐसे थोड़ी 140 देशों में सेंटर खुले, और दादी क्या कहती थी, बस मैंने एक कंधे पर ब्रह्मा बाबा को बिठाया, एक कंधे पर शिव बाबा को बिठाया, तो शिव बाबा ब्रह्मा बाबा मेरे कंधों पर बैठे हैं और मैं उड़ती रहती हूँ हनुमान की तरह, जैसे हनुमान को दिखाते हैं ना कैसे राम और लक्ष्मण को अपने कंधे पर बिठाया, तो मैं भी हनुमान की तरह ऐसे उड़ती रहती हूँ शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को कंधे पर बिठा करके, है ना ऐसे गोपवे। हाँ देखो सचमुच दादी ऐसे कहती थी, इतना नशा दादी को होता था। तो बाबा भी देखो क्या कहते हैं। हाँ तो बाबा कहते हैं, तो बाबा कहते हैं हमने बाबा को कुल्हे पर बिठाया है अर्थात शरीर दिया है कि सर्विस करो, करो सर्विस शिव बाबा हमारे मुख द्वारा। उनका एवजा फिर वो कितना देते हैं, जो हमको सबसे ऊंच कंधे पर चढ़ाते हैं। हाँ बाबा ब्रह्मा बाबा कहते हैं कि वो हमको इतना ऊंचा बनाते हैं, इतना एवजा देते हैं, पर हमने उनको अपने कंधे पर बिठाया है। तो उनका एवजा फिर वो कितना देते हैं, जो हमको सबसे ऊंच कंधे पर चढ़ाते हैं, नंबर वन ले जाते हैं शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को। तो बाप को बच्चे प्यारे लगते हैं। अब देखो लौकिक बच्चे भी होते हैं ना, तो लौकिक माँ बाप को बच्चे प्यारे होते हैं। तो बाप को बच्चे प्यारे लगते हैं तो उनको, अब बच्चा बाप को कहेगा पिताजी हम डैडी हमको उठाओ, तो बाबा कहते हैं तो फिर उनको क्या करता है पिताजी, उनका पिता क्या करता है, उनको कंधे पर चढ़ा देता है। प्यार है ना बच्चे से, छोटे बच्चे से, तो बच्चे को कंधे पर बिठा देता है। तो कंधे पर बिठा करके बच्चे को कहता है देखो बेटा तो मेरे से भी लंबे हो गए। हाँ कंधे पर बिठाया है तो बच्चा तो और लंबा हो जाएगा ना सिर से, पिता के सिर से। तो उसको बड़ा नशा चढ़ता बच्चे को, मैं तो पिता से भी लंबा हो गया। तो पिता जो है वो कंधे पर बिठाएगा और माँ कहाँ बिठाएगी, माँ को जब बच्चा कहता है मम्मी उठाओ तो माँ जो है वो गोद में ले लेगी। हाँ वो कंधे पर नहीं बिठाएगी और पिता तो कंधे पर बिठा लेगा। तो माँ बच्चे को सिर्फ गोद तक लेती है, बाप तो कंधे पर चढ़ाता है। पाठशाला को कभी कल्पना नहीं कहा जाता है। स्कूल में हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो क्या वो कल्पना हुई, हम पढ़ रहे हैं ना, तो ये क्या कल्पना है सब जो बाबा सुनाते हैं, ये भी वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है ना। अच्छा मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला बहुत प्रेम से बैठकर रूहानी बाप को याद करना है। याद में प्रेम के आंसू आ जाए तो वो आंसू विजय माला का दाना बन जाएंगे। अपना समय भविष्य प्रारब्ध बनाने में सफल करना है। दूसरा अंतर्मुखी हो सबको अलफ का परिचय देना है, ज्यादा तीक तीक नहीं करनी है। एक ही फुरना रहे कि ऐसा कोई कर्तव्य न हो जिसकी सजा खानी पड़े। वरदान रूहानी यात्री हूँ इस स्मृति से सदा उपराम न्यारे और निर्मोही भव। रूहानी यात्री हूँ इस स्मृति से सदा उपराम न्यारे और निर्मोही भव। रूहानी यात्री सदा याद की यात्रा में आगे बढ़ते रहते हैं। ये यात्रा सदा ही सुखदायी है, रूहानी यात्रा सदा ही सुखदायी है। हाँ वो यात्राओं में तो कितनी तकलीफें आती है, इसमें बाबा कहते हैं सुखदायी है। जो रूहानी यात्रा में तत्पर रहते हैं उन्हें दूसरी कोई यात्रा करने की आवश्यकता ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है दूसरी कोई यात्रा करने की। इस यात्रा में सब यात्राएं समाई हुई है। मन व तन से भटकना बंद हो जाता है तो सदा यही स्मृति रहे कि हम रूहानी यात्री हैं। यात्री का किसी में भी मोह नहीं होता है, उन्हें सहज ही उपराम न्यारे व निर्मोही बनने का वरदान मिल जाता है। स्लोगन सदा वहा बाबा वहा तकदीर और वहा मीठा परिवार, यही गीत गाते रहो। सदा वाह बाबा वाह तकदीर और वाह मीठा परिवार, यही गीत गाते रहो। अव्यक्त इशारे, अशरीरी व विदेही स्थिति का अनुभव बढ़ाओ के अंतर्गत, जैसे बाप को सर्व स्वरूपों से व सर्व संबंधों से जानना आवश्यक है, ऐसे ही बाप द्वारा स्वयं को भी जानना आवश्यक है। जानना अर्थात मानना, मैं जो हूँ जैसा हूँ ऐसे मानकर चलेंगे तो देह में विदेही, व्यक्त में होते अव्यक्त, चलते फिरते फरिश्ता व कर्म करते हुए कर्मातीत स्थिति बन जाएगी। कितनी सुंदर बात है। ठीक है, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। चलो नशा चढ़ाओ आज की मुरली से, बाबा को याद करते हैं।